ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग विचार करते होंगे कि इतने जंगल में क्यों लेके जा रहे हैं। ले आपको क्या लगता है, चलने के बाद में आनंद आ रहा है कि लगता है कि क्यों आए यहाँ पर? हाँ, क्योंकि केवल यहाँ पर अच्छे वृक्ष है, अच्छी ठंडक है, इसलिए जगह सुंदर नहीं है। ये जगह इसलिए सुंदर है क्योंकि ये श्रीधर कोलेवेच नाम के महान भक्त का घर है। हाँ, अभी तो घर नहीं रहा, उसके प्रतिनिधि के रूप में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ ना, यहाँ पर उसका घर हुआ करता था। और ये तो घर बहुत सुंदर है, इसके अंदर बहुत अच्छा छत है, बहुत कलर पेंटिंग है, सीमेंट का कोई छेद वेद नहीं है। श्रीधर कोलेवेचा कृष्ण भगवान के वृंदावन की लीला के अंदर उनका एक सखा था, उसका नाम था कुसुमासव। ये कुसुमासव सखा जो था ये उनका अवतार है। इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीधर के रूप में जन्म लिया। इनका जन्म भी श्रीहट्ट में हुआ था। श्रीहट्ट में श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर ये दोनों का जन्म हुआ है, वहीं पर इनका भी जन्म हुआ है। और उसके बाद में ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म होने के पहले इनका जन्म हुआ था। फिर तीनों लोग नवद्वीप में आके बस गए। कोलेवेच का मतलब है केले बेचने वाला, कोलेवेच यानी कि केला बेचने वाला, कोलेवेच केले बेचने वाला। और नाम श्रीधर, हम बोलते ना कि विजय विजय धावी और सुनील पेंटर, है ना, ऐसा होता है ना, वैसे ही श्रीधर कोलेवेच, श्रीधर केले बेचने वाला। ये बहुत गरीब थे, बहुत इतने गरीब थे, और श्री कृष्ण भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। ये इतने गरीब थे कि इनको कोई जानता नहीं था। आप देखते ना चैतन्य महाप्रभु के घर जब थे, सुबह गए थे ना, वहां से कितना दूर है ये। चैतन्य महाप्रभु निमाई का घर वहां था, और वहां से सीमांत द्वीप, सीमांत द्वीप के अंदर जंगल में इनका झोपड़ी हुआ करता था। अब केले के बन देखे ना आते वक्त, उस समय भी केले के बन यहाँ पर हुआ करते थे। तो उस केले के पत्ते, इस केले के पत्ते के द्वारा बने गए द्रोण, फिर केले, जो भी केले का पेड़ से बनता है, हाँ, केले के पत्ते ऐसे खाने के लिए, फिर केले के पत्ते से बने हुए द्रोण, फिर खाने वाले केले, ये सब कुछ वो बेचते थे। और पूरे नवद्वीप में जो रेट हुआ करता था उससे बहुत कम इनका रेट हुआ करता था। और ये अकेले थे, इनका कोई पत्नी वत्नी नहीं थी। और इनकी झोपड़ी का वर्णन दिया है कृष्णदास कविराज महाराज, वर्णन करते हैं कि इनकी झोपड़ी में छेद ज्यादा थे, झोपड़ी कम थी। इतने छत के ऊपर छेद थे कि छत बहुत कम, छेद ज्यादा। इनकी धोती में छेद ज्यादा और धोती कम थी, ऊपर कुछ वस्त्र पहनते नहीं थे, धोती में इतने छेद, इतनी जगह सिलाया हुआ रहा करता था। उनके पोजिशन में कुछ भी नहीं था, उनके पास एक तांबे का लोटा था, हरे कृष्णा। तो तांबे के लोटे को इतनी जगह मार पड़ी थी, सब जगह पे ऐसा डेंटेड था वो, बहुत जगह पे। और उसमें वो अपना जल पिया करते थे, और दिन भर वो भगवान के नाम का जप करते करते यहाँ पर केले के दुकान लगाते थे। और आप सोच सकते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, गौलोकेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक। उनका समय कितना कीमती होता है। अभी अपने देश में प्राइम मिनिस्टर होता है, अमेरिका का अध्यक्ष होता है बराक ओबामा, उनके एक एक मिनट का कितना कीमत होता है। वो कहीं बेफजूल का काम नहीं करते, हमेशा टाइम टेबल पे अपना, किसको टाइम देना है, कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसको कितना टाइम देना है वो सोचते हैं। कभी कभी उनकी अपॉइंटमेंट 3 मिनट की भी होती है, 2.5 मिनट की भी होती है, ऐसा वो अपना समय को बहुत मूल्यवान तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतना उसका समय अधिक मूल्यवान होता है ना। ये तो कोई CEO, कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं थे, ये इंद्र भी नहीं है, ये तो पूरे ब्रह्मांड के, अखिल ब्रह्मांडों के नायक। कितना समय कीमती होगा उनका, और वो भी ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आए, वो अपने मिशन पे आए थे यहाँ पर। गोलोक का जो धन है वो सब लोगों को हरिनाम संकीर्तन के रूप में सबको प्रेम भक्ति बांटने के लिए वो यहाँ पर आए थे, कितने बड़े मिशन पे आए थे। इतने बड़े मिशन पर इतने बिजी होने पर भी परम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित जब बालक अवस्था में थे तो अपने सुबह के समय के 3 घंटा यहां बिताते थे। तो आपको लगता होगा कि 3 घंटे के लिए वो कुछ बड़ा प्रवचन करते होंगे, शायद प्रचार करते होंगे, उसको कुछ ना कुछ बड़ा काम करते होंगे। 3 घंटे के लिए केवल दुकान पर आना श्रीधर के और उसके साथ झिकझिक करना, बस यही करते थे यार, कुछ नहीं। बोलते मुझे केला खरीदना है, क्या दाम दिया, तो बोलेंगे फलाना दाम है, ए बहुत ज्यादा दाम है, ये तो पूरा नवद्वीप सबसे ज्यादा महंगा बेच रहे हो तुम, लोगों को चीटिंग कर रहे हो, ऐसा अच्छा नहीं है, कितना में दोगे बुलाओ। फिर बोलेगा नहीं इससे और कम नहीं कर सकता मैं, ये तो सबसे कम दाम है। नहीं नहीं तुम चीटर हो, तुम बहुत यहाँ पर गांव में बैठकर लोगों को लूटते हो। ऐसा करके 3-3 घंटे के लिए केले के पत्ते के लिए, केले के पत्ते के द्रोण के लिए और खाने वाले केले के लिए अलग 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 करके ये झिकझिक करते रहते थे हमेशा, और 3 घंटा उसको रुलाते थे। कहते नहीं मैं कैसे जीऊंगा इसके, अगर तुमको इतने दाम में दूंगा तो मैं मेरा कैसा चलेगा। तो आप सोचेंगे कि भाई कितना स्वार्थी होगा आदमी, कितने अपने लिए सोचता होगा। क्या करता था वो, अपने आमदनी में से जितना भी थोड़ा बहुत कमाता था उसका 50% जो भी धन था वो गंगा जी की पूजा में वो व्यतीत करता था। समझा, आपके 2 रुपए इनकम होंगे उसमें से 1 रुपया गंगा जी के लिए, थोड़ा बहुत एक बार कुछ खा लेता था और रात भर गंगा जी की पूजा करते हुए भगवान के नाम का जप करता था। दिन में गंगा जी की पूजा करता था और रात भर अपनी झोपड़ी में बैठकर जोर जोर से भगवान को पुकारता था। तो लोग क्या समझते थे, यहां पर भी बस्ती थी उस समय, तो लोग समझते थे कि भाई गरीब है आदमी, इसके पास पैसा नहीं है, भूखा होगा शायद और भूख के मारे भगवान को पुकारता होगा, इसलिए वो क्या करते थे, लोग करते थे रोटियां और कुछ फल वल उसके घर पे फेंकते थे, ले भाई खा लेकिन चुप रहे हमको सोने दो। उनको पता नहीं था कि वो भगवान के प्रेम से उनको पुकार रहा था, भूख के मारे या परेशान होकर नहीं पुकार रहा था, भगवान पे प्रेम में आनंद विभोर होकर रात भर निद्रा त्याग करके भगवान को पुकारते थे, ऐसे उनका जीवन था। और यहीं से पीछे आगे जाके गंगा जी का भी प्रवाह है, वहां पर वो गंगा जी की सेवा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु रोज यहां पर आते थे, जितने समय बाल अवस्था में थे उसमें हर रोज यहां पर आते थे। लोगों को पता नहीं कि सुबह 3-3 घंटे कहां महाप्रभु गायब है, क्योंकि ये किसी को जानते नहीं थे और महाप्रभु जी ने किसी को कभी बताया भी नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं और मैं कहां समय बिताता हूं। इसका प्रमाण क्या है कि उन्होंने, थोड़ा आगे बताऊंगा, तो उन्होंने 3-3 घंटा बहस करने के बाद क्या करते थे, वो उसका सामान जितना चाहिए उतना फ्री में उठा के भागते थे। इतना सारा बहस करने के बाद में जो चाहिए उठाते थे और तुरंत भाग के चले जाते थे, ये उनके पीछे भागते थे, भागो मत निमाई कहां जा रहे हो, निमाई भाग गए सब लेके, रोज के रोज अपने घर में जाके माता को यहां से उठाए हुए सामान को जाके देते थे। उनके झोपड़ी के ऊपर, फटे पुराने झोपड़ी के ऊपर जब बारिश होती थी तो पूरा घर पानी से भरता था। उसके ऊपर एक वेलू था पपई का, जो होता ना पपीता, वो पपीता रोज दिन में एक पपीता उस पर आता था। एक होता है कच्चा सब्जी वाला, एक होता है पक्का फल वाला। तो सब्जी वाला पकता था तो वो रोज यहां से श्रीधर उनके घर में पहुंचाती थी और उनके घर में सब्जी बनती थी उसकी। तो एक दिन यहां पर आए निमाई और जो उनका पात्र था तो बहुत सारा मार लगा हुआ, वो उठाया और उसने जल पी लिया उसमें से और कहा श्रीधर तुम बड़े धनवान हो, तुम बड़े अमीर हो, बड़े ऐश्वर्य संपन्न हो, तुम अपनी दौलत सबसे छुपा रहे हो। तो श्रीधर कह रहे गौरांगा निमाई मैं तो गरीब हूं, मेरे कपड़े भी नहीं मेरे पास पहनने के लिए, झोपड़ी की अवस्था देखो, कहां है मेरे पास धन, जो भी देख रहे हो तुम, तुम्हारे सामने सब कुछ है। नहीं नहीं तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है, गुप्त धन है, तुमने छुपा के रखा है, मैं एक दिन आकर तुम्हारा गुप्त धन पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करूंगा, तब तुम छुपा नहीं पाओगे उसको। तो उस सीधर को समझ में आता नहीं था क्या बोल रहे हैं निमाई, क्या बोल रहे हैं, हर रोज आके बोलते थे एक दिन तुम्हें मैं एक्सपोज करूंगा, सब दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा। तो रोज की लीला चलती रही कई साल तक चलती रही। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला किया, महाप्रकाश यानी अपना जो सही रूप है भगवान का, वो 21 घंटा के लिए उन्होंने सबके लिए प्रस्तुत किया और जो अलग अलग अवतारों के अलग अलग भक्त थे उनके अलग अलग भाव के अनुसार उनका उनका दर्शन उनको दिया है। जैसे मुरारी गुप्ता को राम जी का दर्शन दिया उन्होंने, ऐसे अलग अलग भक्तों को अलग अलग दर्शन दिए उन्होंने। तो अचानक चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीधर श्रीधर श्रीधर। तो जितनी मंडली वहां पर थी, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास, हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर, जितने भी भक्त वहां पर थे, बहुत असंख्य भक्त थे वहां पर, छोटे मोटे सेवा करने वाले सभी थे वहां पर, लेकिन किसी को भी श्रीधर नाम के भक्त की पहचान नहीं थी। नो वन न्यू हु श्रीधर। तो जैसे भगवान बुलाते थे श्रीवास आ जाओ, तो श्रीवास पंडित सामने आते थे, तो अद्वैत आचार्य आ जाओ, फिर अद्वैत आचार्य आते थे। तो श्रीधर को बुलाया तो सब लोग देखने लगे कहां से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, किधर से भी श्रीधर नहीं आ रहा है। तो सब लोगों ने पूछा कौन है श्रीधर, कौन है। सब लोग समझ गए अगर महाप्रकाश के इस दिव्य लीला के अवसर पर अगर चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित अगर पुकार रहे हैं किसी भक्त को तो बड़ा महान भक्त होगा वो, और हमको पता नहीं वो महान भक्त कौन है। उन्होंने पूछा महाप्रभु बताइए कौन है श्रीधर। उन्होंने कहा जाओ सीमांत द्वीप के आगे जाओ जंगल में, वहां पर जिस झोपड़ी से तुम्हें जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज आएगी वही श्रीधर का झोपड़ी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने आराम से पुकारेंगे तो वो कैसे ढूंढ के कैसे आएंगे यहाँ पर, बोलेंगे गलत जगह पे आ गए और कहीं ढूंढने को जाएंगे। जरा जोर से पुकारो मतलब वो आएंगे ढूंढने के लिए यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नहीं अब तक रोटी वोटी कुछ गिरी नहीं आपके ऊपर, किसने फेंका नहीं, खाओ और चुपचाप बैठो, पुकारो पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ये आवाज सुन के सब भक्त लोग यहाँ पर आए, देखा कि टूटी फूटी झोपड़ी है, छेद ज्यादा है, झोपड़ी कम है, हाँ उसमें जोर जोर से श्रीधर पुकार रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र। तो सब लोग आए श्रीधर श्रीधर, तो हाँ क्या हुआ, आप श्रीधर हो, हाँ आप श्रीधर, मैं श्रीधर हूँ, बोले आपको गौरांग महाप्रभु बुला रहे हैं। अच्छा मुझे बुला रहे हैं, मुझे गरीब फटीचर आदमी को बुला रहे हैं, तो विश्वास नहीं हुआ, और मुझे गौरांग महाप्रभु बुला रहे हैं ये सुनकर वो बेहोश हो गए, गिर गए बेहोश होकर। अभी क्या करें, तो भगवान पुकार रहे हैं उनको, श्रीधर को लेके आओ। तो उन्होंने बेहोश हालत में उसको उठाया कंधे पर और ले गए श्रीवास आंगन में, यहां से लेकर बेहोशी अवस्था में थे और गए। तभी महाप्रभु का प्रकाश लीला चल रही थी, प्रवेश किया उन्होंने श्रीवास आंगन में, श्रीवास पंडित के घर पे, तभी भी बेहोश थे, तो उन्होंने रखकर जाके महाप्रभु के चरणों में उनको रखा। तो महाप्रभु ने बड़े प्रेम से पुकारा श्रीधर, ओ श्रीधर उठो, देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं। उनकी मीठी मधुर वाणी सुनते ही श्रीधर बेहोशी से जग गए। जैसे देखा महाप्रभु को महाप्रकाश भाव में, तुरंत बेहोश हो गए, फिर उठ गए और गौरांग महाप्रभु ने बोला याद है मैं आपके पास आया करता था और केले के पत्ते के लिए और केले के लिए बहस करता था, और तुम मुझे हमेशा मेरे से वाद विवाद करते थे, बहस करते थे, और फिर मैं तुम्हारे केले के पत्ते और केले लेकर भागता था। बोलो श्रीधर बोलो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो बताओ। मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। देखो मैं, मेरी ओर देखो, मैं परम भगवान गौरांग महाप्रभु हूं, जो चाहिए दे सकता हूं। क्या चाहिए बोलो, सब सिद्धियां चाहिए आपको, अष्ट सिद्धियां, प्राप्ति सिद्धि, अनिमा, लगीमा, महिमा। मतलब आपको पता है प्राप्ति सिद्धि का मतलब क्या होता है, प्राप्ति सिद्धि ये 8 सिद्धियों में से एक सिद्धि है। वो प्राप्त होने के पश्चात आप एक लोक बना सकते हैं अपने लिए, खाली इच्छा से एक लोक आपका हो सकता है, आप एक लोक के स्वामी बन सकते हो। महिमा सिद्धि वो सिद्धि है कि आप सबसे बड़े से बड़ा व्यक्ति बड़े आकार से बन सकते हो। लघिमा शक्ति वो है कि सबसे सबसे सूक्ष्म बन सकते हो। ऐसे कई सिद्धियां हैं। तो भगवान कहते कि आप तो दे दूं, आप लोग क्या कहेंगे, चलो आपको बोलते हैं कि आपको प्राप्ति सिद्धि दिला देते हैं, जो चाहे वो आपको मिलेगा इच्छा करने से केवल। तो आप तुरंत मन में लिस्ट बनाने लगेंगे क्या क्या प्राप्ति करनी है। लेकिन श्रीधर ने कहा क्या करूंगा उसको लेकर, व्हाट विल आई डू। तूने कहा कि एक वैकुंठ आपके नाम कर दूं, तो भगवान है वो, वैसा नहीं बोलेंगे। एक गाड़ी आपके नाम कर दूं, एक स्कूटर दे दूं, एक फ्लैट दे दूं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे लोक दे दूं पूरा। इतना बड़ा प्रलोभन दिया भगवान ने उनको, जो सुन के अगर हमको मिल रहा है तो हम सुन के बेहोश हो जाएंगे कि ये हमारा हो रहा है। हाँ, श्रीधर उस समय अपना होश नहीं गवाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर क्या करूंगा। तो मुझे भी वो पूरी लिस्ट याद नहीं, भगवान ने उनको बहुत बड़ी बड़ी चीजों का प्रलोभन दिया, ये लो। एक्चुअली वो श्रीधर की जो गौरव है, श्रीधर की जो महानता है, उसको प्रकट करने के लिए सब बोल रहे थे। उनको पता था कि श्रीधर को इन वस्तुओं में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। पहले उन्होंने कहा कि आपको मुक्त कर दूं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दूंगा, सभी कष्टों से पीड़ाओं से मुक्त कर दूंगा। कौन सी मुक्ति चाहिए आपको, सायुज्य सारूप्य सालोक्य सामीप्य, क्या चाहिए बताओ। मैं क्या करूंगा मुक्ति लेकर। मुक्ति लेने के बाद क्या होता है, जीरो लेवल, न्यूट्रल लेवल, उसके आगे कुछ नहीं। मुक्ति को मना कर दिया, इस जीवन के भोग को मना कर। पहले पूछा इंद्र का पद चाहिए, इंद्र पद दिला दूं, देवताओं का राजा बना दूं आपको, नहीं चाहिए। ये ऐसे हम लोग भी कथा में बोल रहे हैं, आप लोग क्या है, आपने देखा नहीं, आपको पता भी नहीं क्या होता है वो। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रलोभन हमको दे दिए जाएंगे तो हम लोग तुरंत टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। एक ही बार प्राप्त कर लो इसी जीवन में, मौका मिल रहा है महाप्रकाश लीला में। लेकिन श्रीधर ने हर एक चीज को, पहले भौतिकता से शुरू हुआ, इंद्र का पद, उसके बाद में मुक्ति, उसके बाद में वैकुंठ, उसके बाद में सिद्धियां, उसके बाद में हर प्रकार के जो लाभ है, अरे ब्रह्मा लोक में, स्वर्ग लोक में, सुर लोक में, उधर इतने सारे भोग उपलब्ध हैं, इतनी सिद्धियां उपलब्ध हैं कि एक सिद्ध लोक है वहां पर जन्म से ही व्यक्ति सिद्ध होता है। जैसे पंछी के जन्म से ही पक्षी उड़ने लायक होता है ना, वो हमारे लिए हवाई जहाज और कुछ कुछ करना पड़ता है, तो जन्म से ही उड़ते रहते हैं। पर बंदर जो है वो जन्म से ही ओलंपिक रहता है, गोल्ड मेडलिस्ट एथलेटिक्स में, हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और वो बंदर तो बचपन से ही एथलेटिक में इतना एक्सपर्ट रहता है, एक हाथ से पूरा यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है वो। हम लोग बहुत मेहनत करके और बाद में गोल्ड मेडल लाते हैं उसी को, वही काम करने के लिए। तो वैसे सिद्ध लोग है, जन्म से सब लोग सिद्ध है वहां पर। और एक सिद्धि ऐसी है कि देखो ये सूरज की किरण यहां से आ रहे ना, ऐसा मेरे हाथ पे गिर रहे ना, उस सूरज के किरण पर बैठकर आप सूर्यलोक में प्रवेश कर सकते हो। इतनी बड़ी सिद्धि है, क्रेंटर सूर्यलोक का, बट जंप बाय सिटिंग ऑन अ रे ऑफ सन। ये सब प्रलोभन ठाकुर जी ने श्रीधर को दिए, और सब श्रीधर ने मना कर दी। हर बार पूछते रहे इसको लेकर मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू विद दिस। अरे श्रीधर, तुमको मैंने क्या क्या नहीं पूछा, तुम सब चीज को मना कर रहे हो, और आज तुम्हें कुछ ना कुछ लेना ही होगा। मैं देना चाहता हूं, मांगो श्रीधर, मांगो। बोले क्या मांगो श्रीधर, भगवान को बोलते हैं क्या मांगो भगवान। नहीं, भगवान ने जिद किया, फिर आपको मांगना ही होगा और हम देते रहेंगे आपको। श्रीधर ने विचार किया और क्या मांगा होगा श्रीधर ने। श्रीधर ने कहा कि जन्म जन्मांतर तक मैं केले बेचने वाला बना रहूं, और जन्म जन्मांतर तक आप मेरे दुकान में आकर मेरे से बहस करके मेरे केले छीन कर लेते जाते रहिए। यही उन्होंने वरदान मांगा। क्या उस वरदान का, वरदान मांगने का क्या रहस्य है, क्या भाव है उनका। भाव एक ही है, आपको जो आनंद मिल रहा है वो मैं आपको देता रहूं। जो भी आनंद आपने मुझसे आके लेने का प्रयास किया और कुछ कुछ आनंद मैंने आपको दिया, देने में सफल रहा, वही आनंद आपको देने में मैं सफल रहूं हमेशा, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मतलब मैं गरीब रहूं, फटीचर रहूं, मेरे पास कुछ नहीं रहे, मेरे घर के अंदर 50 छेद रहे, मेरे धोती के अंदर 100 छेद रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनका आनंद इसी में था, आधा तनख्वाह आधी आमदनी गंगा जी की सेवा में। लोग उनको पागल बोलते थे एक्चुअली, कि भाई एकदम गया गुजरा, अति भ्रष्ट आदमी है ये। लेकिन उसी में भक्त को आनंद है। मतलब स्वत्व को नष्ट करके केवल भगवान को केंद्र स्थान में रखे, जो भी कुछ है या कुछ नहीं है, जो भी है जो भी नहीं है, वो सब भगवान की सेवा में उनके आनंद के लिए है। ऐसे ये श्रीधर का व्यक्तिमत्व है, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ श्रीधर। समाव अदर श्रीधर का व्यक्तित्व इतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है कि एक तो वो किसी को जानते नहीं थे, ना उसको कोई जानते थे, कोई पोजीशन ही नहीं उसके पास, कोई मानता है, कोई सम्मान है, कोई लोग पहचानते हैं। कभी कभी संत लोग थोड़े गरीब होते हैं, फटीचर होते हैं, फकीर होते हैं, फिर भी लोग आके उनको दर्शन करते हैं, माला पहनाते हैं, दंडवत करते हैं, उनको भेंट देते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। संत लोग विरक्त रहते हैं, इनके पास ना कोई फॉलोइंग है, ना कोई अनुयायी है, ना कोई धन है, ना कोई जानते हैं उनको, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोज भगवान, भगवान कैसे होते हैं, भगवान सबके हृदय के भाव को जानते हैं। आप काले कलोटे होंगे, शायद गरीब होंगे या अनपढ़ होंगे या कोई गंवार होंगे, कोई शूद्र के घर में पैदा होंगे होंगे, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है। हृदय में क्या भाव है उसी को देखकर भगवान आकर्षित होते हैं, नहीं तो भगवान ऐसे जंगल में आकर एक भक्त को अकेले क्यों मिलते थे। मैंने कहा ना, अखिल ब्रह्मांड नायक के समय की वैल्यू क्या होती है, 3-3 घंटे बिता रहे हैं बिना प्रवचन किए हुए काली बहस करने के लिए। अपने भक्त के साथ में एक सखा है उनके, वो सखा के साथ में आनंद का समय बिता रहे हैं। किसी को पता भी नहीं है कि कौन है ये भक्त। पता चला तब जब भगवान ने महाप्रकाश लीला किया, और जब महाप्रकाश के बीच में पुकारा तब पहली बार श्रीधर का नाम लोगों ने सुना, और तब उसकी महानता पहचानी, और तब उसको बेहोश अवस्था में उठा के वहां ले गए, तो सब अद्वैत आचार्य, महाविष्णु के अवतार, राधा रानी के अवतार, गदाधर पंडित, सब लोग समझ गए कि श्रीधर की क्या पोजीशन है। इसलिए भगवान के सामने अगर कोई पोजीशन बनाना है तो वो हृदय के भाव से बनती है। और श्रीधर ऐसा एक भक्त है, चैतन्य चरितामृत में ऐसा एक नामचीन, ऐसा एक महान भक्त है श्रीधर, जिसने अपनी लीला से भगवान का दिल जीता और भगवान को आनंद दिया। और केवल ऐसी ही स्वयं को नष्ट करते हुए, स्वयं के सारे अस्तित्व को नष्ट करते हुए, केवल भगवान को आनंद देने के लिए वो वरदान उन्होंने मांगा। जिस महाप्रकाश लीला में सारे भक्तों ने अपनी चाची, मामी, दादी सबका लिए वरदान मांगा, उसके अंदर इसको दुख हो रहा है उसको मुक्त करो, इसको तकलीफ हो रही है उसको मुक्त करो, सबको भगवान ने वरदान दिया। फिर श्रीधर को अकेले को पुकार पुकार कर बोल रहे, ये दू क्या, वो दू क्या, ये दू क्या, वो दू क्या, फिर भी सबको मना कर दिया उसने। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मुझे न धन चाहिए, न सुंदर स्त्री चाहिए, न अच्छे अच्छे वचन चाहिए, न गौरव चाहिए, न स्तुति चाहिए, हाँ मुझे बार बार जन्म भी लेना नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए, ऐसा कुछ भी मांग नहीं भक्त के हृदय में। भक्ति की मांग क्या होती है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतुकी दे, जन्म जन्मांतर तक में मुझे जन्म लेना पड़ेगा तो भी आपकी अहेतुकी निरपेक्ष भक्ति मुझे प्राप्त होती रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है, और बड़े मन में अन्य कोई इच्छा नहीं है। तो हमें इस भूमि पर बैठकर, हाँ इस सुंदर पवित्र जगह पर बैठकर श्रीधर से प्रार्थना करनी चाहिए, श्रीधर आपके भाव का एक अणु मात्र भी भाव हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हमारा ये तुच्छ जीवन धन्य हो जाएगा। जिस भाव को देखकर भगवान स्वयं मोहित थे आपसे, सब कुछ छोड़कर आपके समय आपके साथ इतना समय बिताते थे, तो वो भाव आपको हमको दीजिए। ऐसे आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, श्रीधर का भाव भगवान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, और श्रीधर का एक अणुमात्र भाव भी हम लोग स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ जो नहीं है वो भी प्राप्त हो जाएगा, जो भी अपरिपूर्णता है वो सब परिपूर्ण हो जाएंगी, जो भी कमियां हैं वो त्रुटियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो हम लोग, मैंने कहा ना पहले कि दिखते थे भिक्षुक जैसे गरीब, लेकिन हम उनके पास भिक्षा मांगने आए हैं उनके हृदय के भाव की। और महाप्रभु चैतन्य ने कहा था ना कि एक दिन पूरे विश्व के सामने तुम्हारा धन दौलत मैं सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो महाप्रकाश लीला में श्रीधर का जो आध्यात्मिक धन था, ऐश्वर्य था, महानता थी, वो भगवान ने सबके सामने प्रस्तुत कर दी कि श्रीधर क्या वस्तु है, क्या भक्ति है श्रीधर के अंदर। वो भक्ति का धन जो है वो सबके सामने भगवान ने उस दिन प्रस्तुत किया जिस दिन भगवान ने महाप्रकाश लीला षट प्रहर लीला संपन्न किया। तो मुझे बहुत, कैसे बताऊं आपको, श्रीधर इतनी महान व्यक्ति है कि भले आपको 15 मिनट 20 मिनट जंगल से आना पड़ेगा, और हर समय यात्रा में लोगों को यहाँ तक लेके आता हूँ, तो ये जगह उनके निवास का प्रतिबिंब है। इतना सुंदर तो उनका निवास नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले एकदम बहुत जूना पुराना फटा पुराना मंदिर था, अभी उन थोड़ा सा ठीक करके उसको एक जगह बना के रखा है। जो इसी जगह पर वो रहा करते थे, उनके सान्निध्य से, उनके भक्ति भाव से, उनके रात रात भर भगवान के नाम को पुकारने से ये जो पेड़ पौधे भूमि सब पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। वो उनके सान्निध्य में हमको आने का मौका मिला, ये हमारा परम भाग्य है। इसलिए गौरांग महाप्रभु को भी धन्यवाद दीजिए कि ऐसे भक्त को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया सब लोगों के लिए। तो कैसे सिद्धर को प्रसन्न कर पाएंगे, कैसी कृपा पाएंगे उनके आप, बस प्रेम से आपको भगवान के नाम को पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोग समझते थे कि वो भूखे पेट पे तकलीफ हो गए इसलिए भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन वो भगवान के प्रेम के भूख से उनको पुकारते थे, भगवान भी रात रात भर उनको सुनते थे, तो हमारे भी सुनेंगे, उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है, जब उनको हम पुकारते हैं तो वो सुनते हैं, व्याकुल रहते हैं सुनने के लिए, वेट करते हैं हमारे लिए कब पुकारेंगे, तो हमको श्रीधर से प्रेरणा लेकर उनको पुकारना चाहिए, तब हमारा जीवन धन्य होगा, नहीं तो मनुष्य जीवन लेकर क्या प्राप्ति है, क्या लाभ है। हमने हम बड़े साहब बने, बहुत बड़ा हमारा पोजीशन था, बहुत तनख्वाह, बहुत सारा हमारे पास सेविंग्स है, प्रॉपर्टी है, हाँ सब कुछ है, लेकिन क्या होगा उसका जब शरीर समाप्त होगा, सारा का सारा संपत्ति पोजीशन यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, इसमें से कोई भी वस्तु हमारे साथ में नहीं आ सकती। अगर आ सकती है तो हमारी भक्ति में जो हमने प्रगति की है, जो उन्नति की है, वो हमारे साथ में आ सकती है। बाकी सब कुछ जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि हमको काम आएगा, ये संकट में मदद पड़ेगी उसकी हमारी, ये हमको हमने जमा करके रखा, ये हमको लाभ होगा उसका, ये ऐन मौके पर दगा दे देता है, कोई सहारा नहीं मिलता है हमको। तो हमें ऐसे पवित्र जगह पर आकर ये विश्वास हृदय में हासिल करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए कि हमें केवल वैसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो नश्वर नहीं है, जो चिरंतन है, जो अमर है, जो समय के साथ नष्ट नहीं होती है, और वो आध्यात्मिक धन इकट्ठा करने से हमारा जीवन संपन्न हो जाता है। और भले हमारे पास भौतिक धन न भी हो, फिर भी जीवन चलाने का जो वादा है वो भगवान की तरफ से निश्चित है, वो किसी के जीवन चलाने में बाधा नहीं डालते हैं। भले आपको गरीब रखेंगे लेकिन आपको दो वक्त की रोटी देंगे, चुल्लू पर कपड़ा भी देंगे कवर करने के लिए शरीर को, लेकिन भक्ति का धन भर भर के दे सकते हैं, जैसे हाथी को भी खिलाते हैं, चींटी को भी खिलाते हैं, हमको भी खिलाएंगे, को विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से श्रीधर जी जी रहे थे, हाँ इतनी तटपुंजी आमदनी में 50% गंगा जी के सेवा डाल रहे हैं, वैसा सोचते नहीं कि नहीं मैं 10% कम करूंगा, अभी 60% मेरे लिए रखूंगा, बाकी बहुत महंगाई बढ़ गई है महंगे से रहूंगा, ऐसा नहीं विचारता उनका। श्रद्धा ऐसी होती है जब वो आगे पीछे भौतिक भविष्य का विचार नहीं करती, श्रद्धा ऐसी वस्तु है, श्रद्धा के ऊपर पूरा जीवन चल जाता है, सारी समस्याएं नष्ट हो जाती है अगर श्रद्धा होगी तो। ऐसी श्रद्धा, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति, श्रीधर से हमको भिक्षा मांगनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए इतना चल के। आप सबका भाग्य है, आप सबको मैं बधाई देता हूँ, आप श्रीधर के आंगन में सब लोग पहुँच गए हों, अभी उनसे याचना करो, प्रार्थना करो और अपने जीवन को धन्य करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।